एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम मैट रिडली की एक बहुत ही चर्चित किताब द रैशनल ऑप्टिमिस्ट यानी तर्कसंगत आशावादी पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया वाकई बदल सकती है, खासकर आजकल के माहौल में। तो
हाँ, आजकल मतलब देखो तो चारों तरफ थोड़ी थोड़ी निराशा सी लगती है ना।
बिल्कुल,
खबरें देखो या सोशल मीडिया पर जाओ, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस गलत ही हो रहा है। तो ऐसे में ये किताब मुझे लगता है एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। ये तथ्यों और इतिहास के आधार पर तर्क देती है कि मानव जीवन असल में, आप मानिए, लगातार बेहतर हुआ है।
अच्छा,
हाँ, और भविष्य के लिए आशावादी होने के मतलब ठोस कारण है हमारे पास। बिल्कुल,
और ये सिर्फ ये नहीं बताती कि हाँ भाई चीजें बेहतर हो गई, चलो खुश हो जाओ, नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करती है कि ये जो तरक्की हुई, ये आखिर हुई कैसे, क्या कारण थे इसके पीछे, कौन सी ताकतें काम कर रही थीं।
सही बात है। ये जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि क्या चीजें हैं जो प्रगति को मतलब आगे बढ़ाती हैं और क्या उसे रोक देती हैं।
हाँ, तो तैयार है इस सोच की परतों को खोलने के लिए?
चलिए शुरू करते हैं। पहले लेखक से ही शुरू करते हैं। मैट रिडले ये कोई मतलब आम लेखक नहीं है, वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं और कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक भी। और उनकी पृष्ठभूमि विज्ञान में है, जो मुझे लगता है उनके नज़रिए को काफ़ी ख़ास बनाती है।
हाँ, सही कहा आपने। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राणी विज्ञान, जूलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें पीएचडी की है। तो जीव विज्ञान और खासकर ये जो विकासवादी सिद्धांत है, एवोल्यूशनरी थ्योरी, उसकी उनकी समझ काफी गहरी है और ये उनके लेखन में साफ दिखता भी है।
वो मानव समाज और इतिहास को भी एक तरह से एक जैविक प्रणाली की तरह देखते हैं।
हाँ, और वो सिर्फ मतलब एकेडमिक्स में ही नहीं रहे, उन्होंने द इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े जाने माने प्रकाशन के लिए विज्ञान संपादक का काम भी किया है।
अच्छा,
हाँ, तो उससे उन्हें जो मुश्किल वैज्ञानिक और आर्थिक विचार होते हैं ना, उनको सरल भाषा में समझाने का और दुनिया भर के ट्रेंड्स को पकड़ने का एक हुनर सा मिल गया।
बिल्कुल। और उनका जो सबसे अनोखापन है शायद वो इस बात में है कि वो इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं या लड़ाइयों की कहानी नहीं मानते,
हाँ,
वो जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इन सबको मिला देते हैं और इन सब के जरिए वो मानव प्रगति के मूल कारण को ढूंढते हैं। और उनके हिसाब से वो मूल कारण है इंसानों की एक बहुत ही खास आदत, चीज़ों और विचारों का आदान प्रदान करना और विशेषज्ञता हासिल करना।
आदान प्रदान और विशेषज्ञता।
हाँ, वो मानते हैं कि तरक्की ऊपर से थोपी नहीं जाती बल्कि नीचे से, आम लोगों के आपसी लेनदेन और सहयोग से अपने आप उभरती है।
तो फिर द रैशनल ऑप्टिमिस्ट का मूल सार क्या हुआ, अगर एक लाइन में बताना हो तो?
देखिए, एक लाइन में तो मुश्किल है, पर कोशिश करते हैं। ये किताब मानव इतिहास में हुई अभूतपूर्व बेहतरी की कहानी है। हमारी सेहत, हमारी संपत्ति, हमारा जीवन काल, सब कुछ कैसे नाटकीय रूप से बेहतर हुआ है। और ये सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं है, ये भविष्य के लिए भी एक मजबूत, तर्क पर आधारित आशावादी नजरिया पेश करती है।
अच्छा, तो किताब का दिल क्या है, मतलब केंद्रीय विचार?
किताब का दिल है ये विचार कि मानव प्रगति कोई चमत्कार या संयोग नहीं है, यह हमारी एक खासियत का नतीजा है, चीजों का और उससे भी ज्यादा विचारों का लेनदेन, मतलब एक्सचेंज और विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन।
एक्सचेंज और स्पेशलाइजेशन।
हाँ, रिडलेस के लिए एक बड़ा दिलचस्प, थोड़ा भड़काऊ सा मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, विचारों का संभोग, आइडियाज हैविंग सेक्स।
हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर इसका मतलब शायद गहरा है।
बहुत गहरा, जैसे जीव विज्ञान में होता है ना, दो अलग जीवों के मिलने से कुछ नया पैदा होता है,
हाँ,
वैसे ही जब अलग अलग लोगों के, अलग संस्कृतियों के या अलग क्षेत्रों के विचार मिलते हैं, टकराते हैं, तो उनसे नए आविष्कार जन्म लेते हैं, नई तकनीकें बनती हैं और समाज को चलाने के बेहतर तरीके निकलते हैं। व्यापार सिर्फ सामान बदलना नहीं है, ये विचारों का महासंगम है।
वाह, विचारों का महासंगम, ये अच्छा कहा।
बिल्कुल, ये किताब हमें पत्थर के जमाने से लेकर आज के डिजिटल युग तक की एक यात्रा पर ले जाती है। ये दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे जमा होते गए, खेती कैसे शुरू हुई, शहर कैसे बसे, औद्योगिक क्रांति कैसे आई, और कैसे हमने बार बार उन भविष्यवाणियों को गलत साबित किया जो कहती थीं कि भाई आबादी बढ़ेगी तो भुखमरी आएगी ही आएगी, वो जिसे मॉलथूसियन ट्रैप कहते हैं।
हाँ, वो डर की आबादी हमेशा खाने से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी।
बिल्कुल, किताब दिखाती है कैसे हमने इसे पार किया।
और क्या ये आज की चिंताओं की भी बात करती है, जैसे क्लाइमेट चेंज है या रिसोर्स खत्म होने का डर?
हाँ बिल्कुल करती है, ये उन्हें नज़रअंदाज नहीं करती, बल्कि किताब का तर्क ये है कि जिस इंसानी आविष्कारशीलता और अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन ने पिछली मुश्किलों को पार करने में मदद की, वही भविष्य की चुनौतियों का भी रास्ता निकालेगी। मूल संदेश यही है, निराशावाद अक्सर तथ्यों पर खरा नहीं उतरता, आशावाद के पीछे ठोस तर्क मौजूद हैं।
चलिए, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। किताब के कुछ खास हिस्सों और उनके जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा और करीब से देखते हैं।
जरूर, शुरुआत ही एक बड़ी चौंकाने वाली तुलना से होती है। रिडले हमें फ्रांस के एक बहुत ताकतवर राजा लुई 14वें के जीवन की कल्पना करने को कहते हैं।
अच्छा, सन किंग।
हाँ वही, सोचिए उसके पास कितनी दौलत थी, कितनी सत्ता थी, पर आज के एक साधारण इंसान की तुलना में उसकी जिंदगी असल में कितनी मुश्किल थी।
कैसे?
ना साफ पानी था, ना अच्छी दवाएं थीं, ना तेज यात्रा के साधन थे, ना ही दुनिया भर के खाने का स्वाद चखने का मौका था। आज ये सब एक आम आदमी को उपलब्ध है, ये बस ये दिखाता है कि हम सब मिलकर कितना आगे आ गए हैं।
वाओ, ये तो सोचने वाली बात है।
फिर आता है सामूहिक मस्तिष्क यानी कलेक्टिव ब्रेन का आइडिया। ये बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है।
कलेक्टिव ब्रेन?
हाँ, रिडले कहते हैं कि इंसानी तरक्की का राज किसी एक व्यक्ति के सुपर दिमाग में नहीं है, बल्कि हमारे आपस में जुड़े होने में है। जब लोग व्यापार करते हैं और अपने अपने काम में माहिर होते हैं, मतलब स्पेशलाइज करते हैं, तो ज्ञान और कौशल किसी एक के पास बंद नहीं रहते, वो पूरे समाज में फैलते हैं, जुड़ते हैं और बढ़ते जाते हैं।
इसका कोई उदाहरण है?
सबसे अच्छा उदाहरण है एक साधारण सी पेंसिल। आप सोचिए, क्या दुनिया में कोई एक अकेला व्यक्ति है जो पूरी पेंसिल बनाना जानता हो?
शायद नहीं।
बिल्कुल नहीं। लकड़ी कोई और काटता है, ग्रेफाइट कहीं और से आता है, पेंट कोई और बनाता है, रबर कहीं और से। कोई एक अकेला नहीं बना सकता, लेकिन हमारा ये सामूहिक मस्तिष्क, ये नेटवर्क इसे संभव बनाता है। इसीलिए रिडले कहते हैं कि आत्मनिर्भरता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर असल में ये गरीबी की निशानी है।
अरे, ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। मतलब आत्मनिर्भरता गरीबी है?
हाँ, उनके तर्क के हिसाब से, क्योंकि ये आपको उस बड़े नेटवर्क से काट देती है जहाँ ज्ञान और कौशल का आदान प्रदान होता है।
ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है, यानी अकेले सब कुछ करने की कोशिश शायद हमें पीछे ले जाए। अच्छा, किताब ये भी पूछती है कि करीब 1 लाख साल पहले हम होमो सेपियंस आखिर नियांडरथल जैसे दूसरे मानव समूहों से क्यों आगे निकल गए, जबकि सुनने में आता है उनके दिमाग का आकार हमसे बड़ा भी हो सकता था।
हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, और रिडले का जवाब बड़ा सीधा है, व्यापार।
व्यापार उस जमाने में?
हाँ, जो पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, जैसे बहुत दूर दराज के इलाकों से लाए गए पत्थर के औजार या समुद्री सीपियां जो तट से सैकड़ों मील अंदर मिली हैं, वो दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज लंबी दूरियों तक चीजों का आदान प्रदान करते थे।
अच्छा।
और इस नेटवर्क ने सिर्फ सामान नहीं फैलाया, बल्कि नए आइडियाज और तकनीकें भी फैलाईं। इसके ठीक उलट जो समूह अलग थलग पड़ गए, जैसे तस्मानिया के आदिवासी, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो वो मुख्य भूमि से कट गए।
हाँ,
तो क्या हुआ, उनकी तकनीक समय के साथ बेहतर होने के बजाय और पिछड़ गई। वो मछली पकड़ने और आग जलाने जैसे जरूरी हुनर तक भूल गए। ये अलगाव का नतीजा था।
बाप रे, मतलब कनेक्शन, जुड़ाव ही असल में प्रगति की कुंजी है, लेकिन व्यापार और जुड़ाव के लिए तो विश्वास और सहयोग भी चाहिए होता है।
बिल्कुल चाहिए होता है। और किताब इसी बात पर आती है कि बाजारों ने न सिर्फ इन गुणों की मांग पैदा की, बल्कि उन्हें पनपने में मदद भी की। लेन देन के लिए आपको दूसरे पर थोड़ा तो भरोसा करना ही पड़ता है ना।
सही बात है।
फिर किताब थॉमस माल्थस के उस डरांगे भविष्यवाणी पर आती है कि आबादी हमेशा भोजन से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और भुखमरी तो होकर रहेगी।
हाँ, वो माल्थुसियन ट्रैप।
रिडले दिखाते हैं कि कैसे पहले कृषि क्रांति ने और फिर 20वीं सदी में नॉर्मन बोरलॉग की हरित क्रांति और रासायनिक उर्वरकों जैसे नवाचारों ने इस ट्रैप को तोड़ दिया और वो लोगों को भोजन मुहैया कराया। ये सब इनोवेशन का कमाल था।
और ऊर्जा, ऊर्जा का जिक्र भी है क्या?
हाँ, ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि जानवरों और इंसानों की मेहनत से हटकर जब हमने जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस का इस्तेमाल शुरू किया, तो वो एक तरह की आज़ादी थी।
आज़ादी?
हाँ, सस्ती और भरपूर ऊर्जा ने ही औद्योगिक क्रांति और आज की आधुनिक जिंदगी को मुमकिन बनाया। यहाँ रिडले एक थोड़ी विवादास्पद बात भी कहते हैं कि विकासशील देशों को सस्ती ऊर्जा से रोकना, चाहे कितने भी नेक इरादे से क्यों ना हो, उन्हें गरीबी में फंसाए रखने जैसा हो सकता है।
ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई, इस पर किताब क्या कहती है?
इस पर भी उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो इसे किसी सरकारी योजना या कुछ महान वैज्ञानिकों की देन नहीं मानते।
तो फिर?
वो इसे आम कारीगरों, उद्यमियों, छोटे आविष्कारकों की आजादी का नतीजा बताते हैं। संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, व्यापार करने की संस्कृति और कोयले की आसान उपलब्धता, इन सब ने मिलकर माहौल बनाया। ये नीचे से ऊपर बॉटम अप विकास था, किसी के निर्देश से नहीं हुआ।
और आज के दो बड़े चिंताएं, जैसे अफ्रीका की गरीबी है और जलवायु परिवर्तन, इन पर किताब का क्या रुख है?
अफ्रीका के बारे में रिडले का तर्क है कि वहां की कई समस्याएं बाजार या पूंजीवाद की वजह से नहीं बल्कि उसकी कमी की वजह से हैं। मतलब अस्थिर सरकारें, भ्रष्टाचार, गृह युद्ध, व्यापार में रुकावटें, ये सब लोगों को उस वैश्विक सामूहिक मस्तिष्क से जुड़ने नहीं देती जो समृद्धि लाता है। और जलवायु परिवर्तन को वो एक वास्तविक चुनौती मानते हैं, ऐसा नहीं कि नकारते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इसका समाधान आर्थिक प्रगति को रोकने में नहीं है।
तो फिर किसमें है?
उनका मानना है कि आर्थिक विकास से ही वो तकनीकी नवाचार आएंगे, जैसे सस्ती और बेहतर सोलर एनर्जी, सुरक्षित न्यूक्लियर एनर्जी या कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, जो हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से आजादी दिलाएंगे।
यानी इनोवेशन ही रास्ता है।
बिल्कुल। अंत में किताब एक शब्द इस्तेमाल करती है, कैटालेक्सी।
कैटालेक्सी?
इसका क्या मतलब है?
ये बाजार अर्थव्यवस्था के उस अपने आप बनने वाले जटिल ताने बाने को दिखाता है जिसे कोई एक व्यक्ति डिजाइन या कंट्रोल नहीं करता। ये करोड़ों लोगों के स्वतंत्र फैसलों और लेन देन से खुद ब खुद बनता है और विकसित होता रहता है।
अच्छा, एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम जैसा।
हाँ
बिल्कुल, संदेश साफ है, समृद्धि ऊपर से नहीं थोपी जाती, ये नीचे से उभरती है। भविष्य उज्ज्वल हो सकता है अगर हम विचारों के मिलने जुलने, व्यापार करने और नया सोचने के रास्ते खुले रखें, यानी स्वतंत्रता और आदान प्रदान को बढ़ावा दें।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें या संदेश क्या निकल कर आते हैं? मेरे लिए तो पहला और सबसे जरूरी है ये जो आदान प्रदान की गजब की ताकत है। ये सिर्फ चीजों का नहीं बल्कि विचारों का, तकनीकों का, संस्कृतियों का लेन देन है जो असल में हमें आगे बढ़ाता है। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कैसे अलग अलग शहरों या पृष्ठभूमि के लोग मिलकर भारत में नए स्टार्टअप बना रहे हैं, नई चीजें कर रहे हैं।
सही बात है। और दूसरी अहम बात है विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन का महत्व। कोई एक इंसान या एक समाज सब कुछ नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए।
हाँ,
तरक्की तब तेज होती है जब लोग किसी एक चीज में माहिर होते हैं और फिर अपनी उस महारत का दूसरों के साथ लेन देन करते हैं। ये जो पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की धुन है ना, वो शायद हमें उस बड़े सामूहिक मस्तिष्क से काट सकती है जो असल में प्रगति का इंजन है।
तीसरा संदेश जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो ये है कि समृद्धि और प्रगति अक्सर नीचे से ऊपर आती है, बॉटम अप।
हाँ, बॉटम अप
मतलब बड़े बड़े सरकारी प्लान या नीतियाँ शायद उतनी कारगर ना हो जितने आम लोगों के रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रयास होते हैं, उनके व्यापार, उनके आविष्कार, उनका आपसी सहयोग, हमारे गली मोहल्ले के बाजार, छोटे कारीगर, ये सब उसी उभरती हुई व्यवस्था का हिस्सा है।
बिल्कुल। और चौथा संदेश जो आज के समय के लिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है, निराशावाद हमेशा तथ्यों पर आधारित नहीं होता।
हाँ, ये तो बहुत सुनने को मिलता है।
मीडिया में देखिए बुरी खबरें ज्यादा दिखती हैं, पर अगर हम लंबे समय के आंकड़े देखें, जैसे औसत उम्र बढ़ी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, गरीबी कम हुई है, बाल मृत्यु दर घटी है, यहां तक कि हिंसा का स्तर भी कम हुआ है दुनिया में।
अच्छा।
हाँ, ये जानना जरूरी है। भारत में भी देखिए पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त सुधार हुआ है कई पैमानों पर, तो इन सकारात्मक रुझानों को जानना भी जरूरी है ताकि तस्वीर पूरी दिखे।
और पांचवा अहम बिंदु क्या होगा?
मेरे हिसाब से नवाचार, इनोवेशन ही हमारा असली और कभी ना खत्म होने वाला संसाधन है।
हाँ।
हमें डर लगता है कि तेल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास देख लीजिए, इंसान हमेशा जरूरत पड़ने पर नए और बेहतर तरीके खोज लेता है। हम या तो मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना सीख लेते हैं या फिर बिल्कुल नए विकल्प बना लेते हैं।
जैसे?
जैसे पहले तांबे के तार लगते थे टेलीफोन में, अब रेत से बने फाइबर ऑप्टिक केबल लगते हैं, है ना? या पेट्रोल डीजल की जगह अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। हमारी सोचने और बनाने की क्षमता ही असली अक्षय ऊर्जा है। किताब में कई पंक्तियां ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। एक केंद्रीय विचार जो मुझे बहुत पसंद आया वो कुछ इस तरह है, आधुनिक दुनिया का रहस्य उसका विशाल आपस में जुड़ा हुआ सामूहिक मस्तिष्क है, जिसकी शुरुआत 100,000 साल से भी पहले अफ्रीका में आदान प्रदान और विशेषज्ञता के आविष्कार से हुई थी।
कमाल का नजरिया है। मतलब हमारी सारी तरक्की किसी एक सुपर जीनियस की वजह से नहीं है, बल्कि हम सबके एक दूसरे से जुड़ने और लगातार आइडिया शेयर करने का नतीजा है। ये व्यक्तिवाद से हटकर सामूहिकता की ताकत को दिखाता है ना?
बिल्कुल। और एक और सीधी, थोड़ी चुभने वाली लेकिन सच्ची बात, आत्मनिर्भरता गरीबी है। गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता वैश्विक मस्तिष्क से जुड़ना है, यानी एक विशेष निर्माता बनना और एक विविध उपभोक्ता बनना।
ये बात तो आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में कितनी सटीक बैठती है। मतलब अलग थलग रहने में भलाई नहीं है, दुनिया से जुड़कर अपनी खासियत का योगदान देकर और दूसरों की खासियत का लाभ उठाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।
सही कहा। और रिडले का शायद सबसे मशहूर और यादगार वाक्य जो हमने पहले भी जिक्र किया था, विचारों का संभोग होता है, आइडियाज हैव सेक्स। सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी नवाचार का इंजन मौजूदा विचारों का नए विचारों में पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन है।
हाँ, ये रूपक वाकई बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि नए आइडिया आसमान से नहीं टपकते, वो अक्सर तब पैदा होते हैं जब दो या ज्यादा पुराने अलग अलग क्षेत्रों के विचार आपस में मिलते हैं, टकराते हैं और उनसे कुछ बिल्कुल नया और अप्रत्याशित जन्म लेता है। जैसे वो मोबाइल फोन और इंटरनेट मिले तो पूरी ऐप्स की एक नई दुनिया ही खुल गई।
बिल्कुल सही उदाहरण। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है।
व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो शायद ही हमें किसी एक हुनर या क्षेत्र में गहरी महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब स्पेशलाइज करो। लेकिन साथ ही दूसरों के साथ सहयोग करने, नेटवर्क बनाने और अलग अलग तरह के लोगों से सीखने के लिए भी। सिर्फ अपने दायरे में सिमट कर मत रहो।
हाँ, और अपने काम या कारोबार के लिहाज से सोचें तो इसका मतलब है नए आइडियाज के लिए दिमाग खुला रखना। जरूरी नहीं कि आइडिया आपकी इंडस्ट्री से आए।
सही बात।
अलग अलग फील्ड से प्रेरणा लेना, पार्टनरशिप करने से ना हिचकिचाना। कोई भी अकेले सब कुछ हासिल नहीं कर सकता।
हाँ।
और अगर निवेश की बात करें तो शायद ये नजरिया हमें रोज की छोटी मोटी बुरी खबरों या बाजार के उतार चढ़ाव से थोड़ा ऊपर उठकर देखने में मदद करता है।
हाँ, मतलब दुनिया की लंबी अवधि की आर्थिक तरक्की और इंसानी इनोवेशन की क्षमता पर भरोसा रखने का एक आधार देता है।
बिल्कुल।
समाधानों की बजाय नीचे से लोगों द्वारा खुद खोजे गए समाधानों पर ज्यादा भरोसा करने की बात करती है।
और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये हमें एक ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाने में मदद करती है। हम अक्सर सिर्फ समस्याओं पर ही फोकस करते रह जाते हैं, जो जरूरी भी है, मैं मानती हूँ।
हाँ, जरूरी है।
लेकिन ये किताब याद दिलाती है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने अतीत में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई हैं और आज हमारे पास उन समस्याओं से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा साधन है, ज्ञान है, क्षमताएं हैं।
बिल्कुल। ये जानने से डर कम होता है और समाधान खोजने की हिम्मत बढ़ती है, सक्रियता बढ़ती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद, इस किताब के विचारों में इतना गोता लगाने के बाद, आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद ये कि इंसानी तरक्की और खुशहाली कोई जीरो सम गेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान होना जरूरी है।
हाँ, ये एक सकारात्मक योग का खेल है, पॉजिटिव सम गेम।
बिल्कुल, जो सहयोग और आदान प्रदान से सबके लिए बढ़ता है। ये सामूहिक मस्तिष्क का विचार और कैसे प्रगति अप्रत्याशित तरीकों से नीचे से ऊपर उभरती है, ये जानना वाकई उम्मीद जगाता है। आपके लिए क्या रहा?
और मेरे लिए सबसे यादगार बात यह है कि ये किताब निराशा के इस माहौल में जो आजकल बहुत दिखता है, उसमें तर्क की एक रोशनी दिखाती है। ये हमें तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर एक तर्कसंगत आशावाद, रैशनल ऑप्टिमिज्म अपनाने का हौसला देती है। उनके हल खोजने की और लगातार बेहतर करने की बस शर्त एक ही है कि हम विचारों को आजादी से मिलने और पनपने दें।
हाँ, ये भविष्य के लिए एक उम्मीद है, लेकिन अंधी उम्मीद नहीं, बल्कि एक सोची समझी तर्क पर आधारित उम्मीद।
बिल्कुल, तर्कसंगत आशावाद।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।